चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये गुप्त साधना का है पथ, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी। कभी तपस्या कभी संघर्ष, तो कभी आत्मा की मौन ज्योति। अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है, भय और मोह सब त्याग जाना है। कांटे चुभे या आंधियां उठे, सत की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर भी मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये योग अग्नि नहीं केवल जलाती, ये शुद्ध भी करती है हर कण कण। जो भीतर से अंधकार को मिटा दे, है यही अग्निपथ का अमर प्रण। ये अग्नि करती वासनाओं को भस्म, ये अग्नि करती अहंकार का अंत। जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से, वो पा लेता परमात्मा का अंत। अग्निपथ अग्निपथ चलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ पर तू नहीं अकेला, भगवान स्वयं संग संग चलते। हर आंसू को मोती बनाते, हर पीड़ा को सहज ही हरते। ये पथ कठिन है पर है अमर, यही मुक्ति का सच्चा द्वार। अग्निपथ ही साधक की पहचान है, यही तपस्वी जीवन का आधार। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। जहां अंत में ना कोई दुख ना भय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय। मैं अग्निवीर
ऑप्शन हरिजनों के पिता, द फादर ऑफ हरिजन्स, जिन्हें कहा जाता था ठक्कर बप्पा, ऐसा उनका नाम था। महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले उनके निकट के अनुयायी, और जिन भारत के गांव गांव में घूमकर संविधान बनाते समय बड़ा योगदान दिया। हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए जिन्होंने बहुत कार्य किया, अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें गांधी जी ने नाम दिया था बप्पा ठक्कर। वो ट्रेन में मुंबई जा रहे थे प्रवचन देने के लिए। ट्रेन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट था और लोगों की भीड़ थी, बैठने को जरा भी जगह नहीं थी। और उसी ट्रेन में एक हट्ठा-कट्ठा व्यक्ति पूरी एक बर्थ पर पैर पसारे हुए पूरी जगह लेकर बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। ये बप्पा ठक्कर ने उनसे अनुरोध किया कि यदि आप मुझे थोड़ी देर बैठने दे तो अच्छा होगा, यहाँ पर जगह है और दो तीन लोग और बैठ जाएंगे। उस व्यक्ति ने घृणात्मक भाव से कहा, चुपचाप खड़े रहे नहीं तो एक लात दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति अखबार पढ़ते हुए अपने बाजू के एक व्यक्ति से कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूं, वहां पर बप्पा ठक्कर जी का प्रवचन है और वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, मेरे लिए तो वो सद्गुरु ही है। कहानी पूरी हुई। जिसका वो प्रवचन सुनने जा रहा है वही व्यक्ति का दूसरी तरफ वो अपमान भी कर रहा है और उसे पता ही नहीं ये वही है। उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस थे, एक जगह देना, दूसरा अपमान करना। उसने दूसरा ऑप्शन चुना, अपमान करना। आगे क्या हुआ पता नहीं, जब वो वास्तव में गया होगा और बैठा होगा और देखा होगा मंच पर उसी व्यक्ति का प्रवचन सुनने जा रहा हूं जिसका मैंने ट्रेन में बुरी तरह से अपमान किया था, तब उसे क्या हुआ होगा वो खुद जाने। हर जगह ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। कौन सा चुनते हैं हमारे ऊपर है। चुनौती भरा मार्ग हम चुनते हैं या सुविधाजनक मार्ग हम चुनते हैं? जिसमें भीड़ चल रही है वो मार्ग हम चुनते हैं या जिस पर कोई नहीं ऐसा मार्ग चुनते हैं? सुखों का मार्ग हम चुनते हैं या दुखों का मार्ग चुनते हैं? वो हम पर है। यदि उस व्यक्ति को पता होता कि यही बप्पा ठक्कर है तो क्या वो ऐसा करता? और क्या ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे आसपास है उन्हें हम जानते हैं या जाने ही? क्या ये संभव नहीं है कि जो अब बहुत साधारण दिख रहे हैं वो आगे चलकर असाधारण हो जाए, महान हो जाए? जो हमारे यहाँ नौकर बनकर काम कर रहा है, हो सकता है वही आगे चलकर किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए, जिसमें हम एक छोटे से क्लर्क हो। ऑप्शंस, किस मार्ग को हमने चुना? टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड, टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई हैव टेकन द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अंग्रेजी कवि लिखता है, दो मार्ग थे और मैंने वो चुना जिसमें बहुत कम लोग चुनते हैं, जो जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और बस यही अंतर है। ये लाइनें कहाँ लिखी थी पता है? माउंट आबू का जो चौराहा है पोस्ट ऑफिस के सामने, वहां पे ये चार लाइनें लिखी थी। लंबे समय तक लिखी थी, अभी मिट गई है, अभी उसको पेंट कर दिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कांटे रौंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलो भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था पर मुझ में उनमें भेद यही। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, पथ पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरा पथ नया है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार पिसलती, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर, हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर श्वास बने तप की लकीर, मैं अग्निवीर। न रुकना है न झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सत्य ज्योति का बनकर वीर, मैं अग्निवीर। यह गुप्त साधना का है पथ, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी, कभी तपस्या कभी संघर्ष तो कभी आत्मा की मौन ज्योति, अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है, भय और मोह सब त्याग जाना है, कांटे चुभे या आंधियां उठे, सत की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है। ये योग अग्नि नहीं केवल जलाती, ये शुद्ध भी करती हर कण कण, जो भीतर के अंधकार को मिटा दे है यही अग्निपथ का मर्म। यह अग्नि करती वासनाओं को भस्म, यह अग्नि करती अहंकार का अंत। जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से वो पा लेता परमात्मा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक बहुत सफल किसान को, सफल और समृद्ध किसान को मिलने के लिए एक पत्रकार आता है। ये किसान बहुत अमीर है, बहुत नाम है इसका, और सब कहते हैं उसने बहुत मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वो पत्रकार उससे पूछता है कि वो क्या कारण है जिस वजह से आप इतने सफल हुए, किसान तो बहुत है पर वो कौन सा कारण है, या वो कौन से कारण बने जिस वजह से आप इतने आगे निकल गए। वो किसान कहता है, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, हम थोड़ा बैठ जाते हैं और ये जो दिया जल रहा है, बत्ती जो जल रही है, इसको बुझा सकते हैं। कहानी पूरी हुई। जिसने पैसे कमाए हैं उसे उस पैसों की वैल्यू है, यही रहस्य है। लाइट अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, उसी के घर में आया है ना। वो क्या कहता है, लाइट हम तब तक बंद कर देते हैं, लाइट की आवश्यकता नहीं, प्रकाश है। जिसने कमाए हैं वही उसका महत्व जानता है, जिसने कमाए ही नहीं उसे उसका महत्व भी नहीं है। जिसने अर्जित किया है पुरुषार्थ, जिसने जीता है अमृत वेले को, नींद को, आलस को, जिसने जीता है अपने जिह्वा के रस को, स्वाद को, जिसने जीता है संवेदनाओं को, जिसने जीता है विकार को और वासना को, और जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, वही उस ब्रह्मचर्य के एक एक बूंद की का महत्व जानता है। तो कल हमने पांच बातें देखी थी, कौन सी? कल हमने पांच बातें देखी थी, पांच मिनट नियम क्या था वो, उसको पोस्टपोन करो। कितना देर के लिए? 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट। तो वो जो लत है, वो जो इच्छा है, वो जो विकार विकर्म करने की ललक, अचानक वो तीव्रता जो उत्पन्न हो गई है, वो खो जाएगी, क्योंकि वो एक सेंसेशन मात्र है। ये भी हमने एक हैक देखा था कि जो इच्छा है वो क्या है, एक केवल संवेदना है। उसको ये नाम ही ना दो कि ये लत है, ये एडिक्शन है, ये केवल एक संवेदना है, और संवेदना सुखद होती है, दुखद होती है, असुखद अदुखद होती है, बस। दूसरा, रिपल्शन विजुअलाइजेशन, जिस चीज को हम अत्यंत सुंदर समझते हैं और उसमें फंसे हुए हैं, उसको आर पार देख लेना, उसकी गंदगी को देख लेना, उसमें से उठ रही सड़ांध को देख लेना, वो नया विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। उदाहरण दिया था जैसे कोई स्मोकर है, टोबैको च्यूअर है, वो देखे होंठ कैसे खराब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, और उसके कैंसर के बाद एक बड़ा ऑपरेशन होता है, इसको कहते हैं कमांडो सर्जरी। कमांडो सर्जरी जब ओटी में होती है ना, तो ओपीडी में वो डॉक्टर दिन भर नहीं मिलते, क्योंकि वो सर्जरी चालू होती है सुबह 8 बजे से रात को 5 बजे, शाम को 6, 7, 8, 10 घंटा चलता है कमांडो सर्जरी, जहाँ को ये सारा निकाल के आपने देखा होगा, यहाँ का फ्लैप निकाल के, यहाँ का फ्लैप निकाल के यहाँ चिपकाते हैं, ऐसे दिखता है वो पेशेंट, मुंह आड़ा टेढ़ा हो जाता है, और जीवन भर नाक में नली रहती है भोजन के लिए, यहाँ से नहीं खा सकता। तो वो जो गुटखा, खैनी, मिराज, पान पराग, वो सारे जो है तंबाकू खाने वाले, वो पोटली रखते हैं ना एक छोटी सी, उनको क्या देखना है, ये देखना है, ये यहाँ से ऐसा स्टिच होता है कि यहाँ से ऐसा स्टिच होता है, यहाँ से एक चमड़ी निकाल के यहाँ चिपकाते हैं, और वो ऐसे रहता है जीवन भर। या तो एक दूसरी कंडीशन है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस में ही मुझे ये जो खुलता है, ये पूरा नहीं खुलता है, धीरे धीरे ये जो इतना खुल रहा है वो इतना ही खुलता है इन लोगों का, जो लंबा समय तक ऐसे है बस, फिर वो खा नहीं सकते, वो स्ट्रॉ यूज करना पड़ता है उनको, दूसरा। तीसरा क्या देखा था, लंगर, वो लंगर कुछ भी हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, वो काला धागा हो सकता है, आजकल बीकेस भी बहुत बांध रहे हैं, काले पीले नीले धागे, वो कहते हैं इससे वो बीमारी ठीक होगी, अंगूठी, काले धागे, इधर एक मिला तो पक्का है कि दाएं या बाएं पैर में एक है, एक मिल ही जाता है, और जैसे उनको बोलते हैं तो उसको छिपाते हैं अपने इससे बाहर से, उसको अंदर डाल देते, एक बार देख लो जरा है क्या बाजू वाले के, हो सकता है अभी भी है। तो यहाँ जो बताया था वो अलग है, वो है एंकरिंग, अर्थात कोई लंगर, कोई एक, हाँ कल जो हम कह रहे थे हथियाला है वो शब्द, हथियाला, हाँ कल ही बताया था पर लोगों ने कंफ्यूज कर दिया पब्लिक वही वो शब्द था, हथियाला बांधना। तो बाबा क्या कहते हैं, कुछ बांध के रखो जो याद दिलाता रहे, ये किस लिए है? तो वो एंकर है। चौथा डोपामिन रिसेट, उसमें क्या बताया था, नई कला जिसमें क्या लगे, धैर्य और ध्यान, ऐसी कला सीखना है जिसमें बड़ा धैर्य है, फॉर एग्जाम्पल भाषा, कोई हिंदी वाला है और उसको मलयालम सीखना है, अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है, तेलुगु सीखनी है इतना आसान नहीं है, बहुत धैर्य चाहिए, और सीखना बोलना नहीं लिखना, उसमें और अधिक धैर्य चाहिए। तो ये ऐसी कला है। अगला, विटनेसिंग सेशन, कैसे करेंगे उसको, उसमें दो है, एक है सजगता से पाप करना, किसी ने ऐसा उसका अर्थ निकाला था, ऐसा नहीं है, वो विकर्म करने तो है नहीं पर कर रहा है, अभी वो आदत है, उस समय वो हो ही रहा है, उस समय सजगता को बढ़ाना है, संपूर्ण सजगता के साथ, चोर का उदाहरण दिया था, तो फिर वो करना मुश्किल हो जाएगा और अपने आप रिजेक्ट लिस्ट में चले जाएगा। तो कल ये पांच बातें देखी थी, आज की नई पांच बातें। सबसे पहला है थर्ड पर्सन नरेशन, अन्य पुरुष वर्णन, जैसे ही लत, एडिक्शन, पाप, विकर्म, आदत खींचे, तो ये नहीं कहो कि मुझे खींच रही है, अपना नाम वहां बीच में लाओ कि इसको ये हो रहा है, तो थोड़ा अंतर डेवलप होगा उसमें और मुझ में, ए ये किसको हो रहा है, इसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। थर्ड पर्सन में बात करना उस समय कि ये जो इच्छा, ये जो आवेश, ये जो उत्तेजना है, ये किसको हो रही है? एक तीसरे व्यक्ति को हो रही है, मुझे नहीं हो रही। अपना उसमें नाम डालना है। थर्ड पर्सन नरेशन, कोई भी चीज को कैसे नैरेट करना, एज इफ थर्ड पर्सन। और ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है लिखने से। जैसे कई कविता हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, कवि कहता है। कोई किताब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, लेखक ने कहा है, लेखक ने कहा है, कवि कहता है, वक्ता जी कह रहे हैं, कहा था, वक्ता ने कहा, प्रवक्ता ने कहा, कवि ने कहा, लेखक ने कहा, नेताजी ने कहा, ऐसा कहते हैं ना, उन्होंने ये कहा। उसी तरह ये मुझे हो नहीं रहा है, किसको हो रहा है? अपना नाम डालना है बीच में, किसको ये हमारे और उसके बीच में एक उसकी जो तीव्रता है लत की वो क्या होगी, उस समय कम होगी। ये सब इमरजेंसी नेचर, इमरजेंसी। आधी रात को कल प्रश्न पढ़े थे ना, आज के प्रश्न नहीं भेजे, भेज दिए। तो प्रश्न, तो इसमें क्या होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा और वो डिस्टेंस क्रिएट होते ही उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, प्ले टू द एंड टेक्निक, अंत तक फिल्म देखना। हमारा जो अवचेतन मन है बहुत बेईमान फिल्म दिखाता है, एक ट्रेलर दिखाता है, एक फिल्म दिखाता है और उसके ट्रेलर में बहुत ही सब कुछ अच्छा है। वो लास्ट का सीन दिखाता ही नहीं है, वो दिखाता है वो कितना अच्छा है, कितना सुखद है, पर इस फिल्म को लास्ट तक खींच के लेके जाना है। जैसे एक दारू पीने वाला है और उसको दारू पीने की इच्छा हुई है तो कितना खुशी उसको मिल रही है, वो सारा दिखाता है, पर इस फिल्म को अभी लास्ट तक खींच के लेके जाना है। लास्ट में हो रही है पश्चाताप, ग्लानी, घर में झगड़े, संबंधों में तनाव, पैसों की बर्बादी, उससे होने वाला अध्यात्म का नुकसान, वो जो ब्रह्मचर्य तोड़ा उसमें बहुत सुख है, और परंतु उसको फिल्म को हम अवचेतन खाली यहीं तक दिखाता है। इस फिल्म को कहां तक लेके जाना है, आगे तक खींचना है, उसको आगे ले जाओ, पूरी फिल्म दिखाओ, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखा सकते हैं अगर, पर फास्ट फॉरवर्ड वो करना नहीं चाहता, वो बस उतना ही देखना चाहता है, उतना सीन उसका। आगे के जो सीन्स है उसमें पश्चाताप है, उसमें खालीपन है, उसमें दर्द है, उसमें ग्लानी है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, ये दोनों ही ऊर्जा के चोर है, दे आर द थीव्स ऑफ एनर्जी। तो क्या करना है, पूरी फिल्म दिखानी है उसको, पूरी कंप्लीट फिल्म खींच के लेके जाना है उसको, जो हम आंखें बंद करके विजुलाइज करते। कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था ना, सेंशुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं, उस कामुक कल्पनाओं में जो सुखद सुखद है वहीं तक हम देखते, उसको खींचो थोड़ा, फिल्म को पूरा देखो। उस फिल्म को हम पूरा नहीं देखते, पूरा देख लिया तो घृणा उत्पन्न हो जाएगी, उस क्रिया कर्म के प्रति, उस कल्पना के प्रति, उस संबंध के प्रति। तो टेक्निक क्या है? प्ले टू द एंड टेक्निक, अंत तक फिल्म को देखना। नेक्स्ट है माइक्रो चॉइस टैक, सूक्ष्म विकल्प का ढेर। जो भी आदत है, जो भी लत है, जो भी एडिक्शन है, वो एक विशाल पहाड़ कैसे बन गया? छोटे छोटे संकल्पों से, छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटी छोटी कल्पनाओं से, छोटे छोटे फोन कॉल से, छोटे छोटे वीडियो कॉल से, छोटे छोटे टेक्स्ट से, छोटे छोटे चैट से, छोटे छोटे मैसेजेस से। इतना बड़ा पर्वत थोड़ी ना ऐसे एकदम खड़ा हो गया, धीरे धीरे खड़ा हुआ है वो। इसके लिए ये टेक्निक कहती है दो चीज़ें। माइक्रो चॉइस, हमें अपने अवचेतन को ये दिखाना है कि इस शरीर का मालिक अभी भी मैं ही हूँ, आई एम स्टिल द बॉस। मतलब जो क्रियाएं अपने आप हो रही है एडिक्शन की वजह से, उन क्रियाओं का मालिक अब भी मैं ही हूँ। मैं अभी हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, ये मत समझो कि मैं हार चुका हूँ, मेरी हार हो गई और तुम ही बड़े हो। अभी भी इस देह को बाबा कहते हैं, ये हाथ इधर रखना, इधर रखना, मैं डिसाइड करूँगा। तो जैसे ही तलब उठे, एक तो पानी पी लो, दूसरा पुशअप्स एक्सरसाइज, 10 पुशअप करो, हार्ड पुशअप्स। ये दो उदाहरण है। लॉन्ग वॉक, पर मुश्किल तब है जब आधी रात को, तब कहाँ जाओगे? हर व्यक्ति को अपना उपाय खुद ढूंढ के रखना है, और तब ढूंढना है जब वो तलब ना उठ रही है, अर्थात अमृत वेले के समय। ये सब करने को उस समय ये सारे संकल्प तो सबकॉन्शियस में दबे हुए हैं, तब ये सब रहता ही नहीं है, परंतु कॉन्शियसली उनको लाना है बाहर। कल हमने क्लास में एक लाइन कही थी और वो सबसे पावरफुल पूरी मुरली का सार था, दैट विच इज लर्नड अनकॉन्शियसली शुड बी अनलर्नड कॉन्शियसली। जो हमने बेहोशी में सीखा, अब उसको होश में भूलना है, उसको अनलर्न करना है। अनलर्न के लिए कौन सा शब्द है? विस्मृत, छोड़ के, अनसीखा करना है। क्या करना है उसको? अनसीखा, अनलर्निंग करना है उसको। पर जो सीखा है वो कैसे सीखा? बेहोशी में। और अनलर्न कैसे करना है? होश में। ये बड़ा काम है। तो माइक्रो चॉइस, तो छोटी छोटी चॉइसेस क्रिएट करके रखनी है वो तलब उठते ही, कि क्या किया जा सकता है। वो आधी रात को उठ रही है, उस समय क्या किया जा सकता है? एक्सरसाइज, वॉकिंग, पानी पीना, और एक दूसरी साधना, पिलो को हटा दो, तकिया, तकिया को हटा दो, जरूरत ही नहीं कुछ। पर नहीं हट सकती, कई लोग दो दो तीन तीन लेते हैं। वो भी एक एडिक्शन ही है, उसको कम कम करते जाओ। इतनी मोटी है तो इतनी मोटी करो, और उतनी मोटी है तो वो ये होते हैं ना शॉल, उसको फोल्ड करके रख दो, या फिर कोई बेडशीट, और धीरे धीरे हटा दो। और उससे भी पावरफुल टेक्निक, बिस्तर को ही हटा दो, जमीन, फ्लोर, ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। दरी बिठाओ, बिछाओ और सो जाओ उसके ऊपर। ये सारे मसल पिसल दर्द जो होते रहते ना, ये सब अलाइनमेंट हो जाएगी स्पाइन की, सारा ठीक हो जाएगा। हार्ड सरफेस। पहले दिन करो तो बीच में आधी रात को उठ के इतना दर्द होगा कि सीधा बिस्तर पे जाओगे। अमृत वेला मिस, क्योंकि इतना दर्द हुआ, थकान हो गई, और जब सो गए तो ये भी हो सकता है। इसलिए टेक्निक्स अलार्म विलार्म सब लगा के सेट करके ही नए प्रयोग करने हैं, ताकि बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। परंतु इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है साइंस का, बहुत सारी स्पाइन अलाइनमेंट, बैक प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाती है। और जितना वो डेनलप का होगा, मखमली होगा, और जितना आरामदायी होगा, उतना ही अमृत वेले उठने की इच्छा नहीं होती। और जितना ओढ़ते हैं ना, वो ओढ़ने वाला की साइज जितनी ज़्यादा होगी, उतनी और इच्छा ज़्यादा होती है सोने की, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फियर ठंडा है और हमने अंदर गर्म एटमॉस्फियर क्रिएट किया है, तो गर्म से ठंडे में थोड़ी आना चाहता है मन। मन को तो माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, उसे कम से कम असुविधा चाहिए, कोई झंझट नहीं चाहिए उसे। बस आप वो सब बातें बताना, अच्छी अच्छी वाली बातें, वो क्यों नहीं बताते, वो समान वाली, वो बाबा को याद करने वाली, योग वाली, बाप समान बनने वाली, वो सब बताओ। ये सब झंझट वाली बातें नहीं बताना, इसमें बड़े खतरे हैं, ये हमको नहीं पसंद। हमें वो बातें चाहिए जिसमें अच्छे से पुरुषार्थ हो, भरपेट 3 बार भोजन हो, 4 बार टोली हो, और अच्छा बैठ के योग भी हो, और अच्छे अच्छे समान का अभ्यास हो, दृष्टि योग हो, विश्व को सकाश देना हो, बाबा से प्यार बढ़े, दादियों के अनुभव हो, बाबा के अनुभव हो, बीच में पिकनिक भी हो, सौगात भी हो, फुल पैकेज एक अच्छा वाला, ये सब करो। ये बाकी झंझट वाली बातें कहां से लाई है बीच में। मन को ये एक जो है वो ही अच्छे से पसंद है उसको, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता, विद्रोह करता है। दो माइक्रो चॉइस ये करके देखो, एक दिन जमीन पर सोकर देखो, केवल एक दरी पहले दिन ही। इसलिए मन को एकदम परिवर्तन पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसी को नीचे डाल के देख लो। दूसरा, उसकी साइज थोड़ी कम करके देखो। फिर जो ओढ़ने वाली जो है, इतना मोटा है, उसको इतना मोटा करके देखो, कम कम करो, एक चादर पे आ जाओ। और वो अभी करना है, मौसम अच्छा है ना, तो वो ठंड में भी चलेगा फिर, पर ट्रेनिंग अंदर से हो, वहीं से उसको क्रिएट कर देना है, कंडीशनिंग, एक रीवायरिंग। फिर वो बाहर की परिस्थिति या ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो चेंज नहीं होगी। तो ये एक चॉइस है। नेक्स्ट है वेगस नर्व एक्टिवेशन। हमारे शरीर में दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम अर्थात तनाव, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम अर्थात शांत। तो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की जो नस है वो है वेगस नर्व। इस वेगस नर्व को स्टिमुलेशन, जैसे ही दिया जाता है वेगस नर्व को स्टिमुलेशन, शांत हो जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से शांत हो जाता है। और वेगस नर्व को स्टिमुलेशन के लिए दो टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स है, पर जो दो जो कही जाती वो है कोल्ड शॉक थेरेपी, कोल्ड एक्सपोजर, ठंडे ठंडे पानी से नहाना। जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं, वो जो उत्तेजना है काम विकार की, वो अपने आप कम हो जाती है, कोल्ड वाटर एक्सपोजर। और दूसरी टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 सेकेंड के लिए श्वास लेना, 1-2-3-4, 7 सेकेंड के लिए श्वास को रोक के रखना, और फिर मुंह से उस श्वास को छोड़ना। करेंगे सभी, 1-2-3-4 श्वास लेना, 1-2-3-4-5-6-7 श्वास रोकना, 1-2-3-4-5-6-7-8 मुंह से श्वास को आवाज के साथ छोड़ना, स्टार्ट। और एक बार 1-2-3-4, ये एक टेक्निक है। दूसरी एक टेक्निक है हमिंग, तीसरी टेक्निक है ओम ध्वनि, ओम ध्वनि हमिंग, हम करना, गुनगुनाना, हमिंग अर्थात गुनगुनाना, ओम ध्वनि करना, ओ तो ये जो ओम ध्वनि है इससे वैगस नर्व एक्टिवेशन होता है, और वैगस नर्व एक्टिवेट होते ही सेंशुअल जो रिफ्लेक्स है, सेक्सुअल जो रिफ्लेक्स है, वो एबॉर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस जब वो हो रहा है तब नहीं, रोज की अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। फिर है शंख ध्वनि, नीचे हम अभी गए थे, एक भाई ने इतना बढ़िया शंख बजाया, 5 मिनट तक बजाया, 3-4 बार पूरा कॉन्क मेडिटेशन, वो बहुत अच्छे से जो शंख बजा सकते हैं उससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है। जो गायक होते हैं, एंकर होते हैं, वक्ता होते हैं, वो सब ये वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस प्रोजेक्शन पर बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनका तो सब कुछ वही है, आवाज से जो पैसे कमा सकता है, आवाज से पैसे कमाते हैं ना लोग अपनी, केवल आवाज से, पर काम बहुत करते हैं वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो एड्स सुनते हो आप रेलवे में, एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, और उसमें भी उनका जो सुबह का आवाज होता है वो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इसके लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये वॉइस आर्टिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं सुबह की आवाज मेरी, उनको ऐसा कहते हैं, 1 मिनट के 20,000 रुपए ये चार्जेस होते हैं, 1 मिनट के 10,000, और जो जितना ज्यादा एडवांस होगा, बहुत ज्यादा, उसके चार्जेस बढ़ते जाते, 1 मिनट बोलने के 20,000। अब वो डिपेंड करता है कितने मिनट की तुम्हारी ऐड है, कितने मिनट बोलना है, वो अपनी आवाज से पैसे कमाते, पर काम भी तो करना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं कि जाके कुछ भी खा लिया, पकोड़े बन गए तो पकोड़े खा लिया और उसके बाद में जाके गीत गाया, ऐसे नहीं होगा। वो तो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो। तो यहाँ पर वैगस नर्व एक्टिवेशन में क्या क्या बताया, एक तो कोल्ड वाटर एक्सपोजर, कोल्ड इमर्शन, ठंडा पानी मुंह पे मारना, जब वासना उठे तो बर्फ वाला पानी, बर्फ का पानी, बर्फ का पानी, फ्रिज अगर है तो उसका फ्रीजर होता है ना, उसमें एक पानी रख के रखो हमेशा, ठंडा वाला एकदम, वो लेके मुंह पे मारना है, तो इसको कहते हैं कोल्ड शॉक थेरेपी। ये जो अभी अभी जिलेबी खाने की रात को 2 बजे इच्छा हुई थी ना, खत्म, मीठा मीठा खाने की रात को 10 बजे इच्छा जो होती है ना, खत्म, कुछ देखने की इच्छा जो होती है ना, खत्म। तो इसको कहते हैं वैगस नर्व एक्टिवेशन। इसमें बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, पर ये, और एक टेक्निक है पैरों को मसाज करना, ये जो है ना, इसका मसाज, और उससे भी अच्छा है बेयर फुट वॉकिंग, ज़मीन पे चलो, नहीं तो कई लोग ये पैरों का मसाज करते हैं नीचे से, उससे भी वो वैगस नर्व एक्टिवेट होता है। लास्ट है सेंचुरी विचुअलाइजेशन, अपने मन में एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा अभयारण्य क्रिएट करके रखना है कि मेरे भीतर एक ऐसी जगह है जहां पर लत का नाम निशान नहीं है, लत फ्री, एडिक्शन फ्री जोन है एक, और जब भी वो मैं वहां जाके बैठता हूं, वहां पे एक्सेस डिनाइड है लत के लिए, एडिक्शन के लिए, माया के लिए, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, कोई भी वहां पर घुसपैठ घुस नहीं सकता, ऐसा एक सेंचुरी अपने ही भीतर क्रिएट करके रखनी है। तो जब जब आक्रमण हो, ध्यान में बैठ जाओ और भीतर चले जाओ कि मैं वहां जाके बैठ गया हूं, और जब ना भी हो तब भी अभ्यास करना है ताकि इमरजेंसी में वो काम आए। कि एक ऐसा स्पेस मेरे भीतर हो, एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप नहीं, एक अकंप स्थान, एक अत्यंत पवित्र स्पॉट भीतर, जहां 100% नैसर्गिक ब्रह्मचर्य है। एक ऐसा मेरे मन के अंदर एक स्पॉट है, एक स्थान है, एक केंद्र है, एक जगह है, एक सेंचुरी है, एक ऐसा अभयारण्य है जहां पर अलाउड ही नहीं है। वो मेरे अंदर मुझे क्रिएट करके रखना है, ताकि इमरजेंसी में वो उस गर्भगृह में मैं प्रवेश कर सकूं और बैठ जाऊं। बंकर कोई नहीं आ सकता है वहां। एक ऐसा एक अग्नि, अग्नि की लकीर है वहां पे, एक सर्कल और जहां पर अग्नि है, और मैं यहां। तो ये 5 चीजें आज की है। सबसे पहली बताई थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के रूप में जब भी अटैक हो तो कैसे बात करना, जैसे थर्ड पर्सन बात कर रहा है। दूसरा, जो ट्रेलर है ना, उस ट्रेलर को नहीं देखो, क्या देखना है पूरी मूवी को देखो। ट्रेलर देखते हैं इसलिए धोखा होता है, ट्रेलर बड़ा बेईमान है। लोग तो ट्रेलर देख के तो मूवी देखने जाते और फिर कहते हैं पैसे बर्बाद हो गए, ट्रेलर तो बहुत अच्छा दिखाया था, ये मूवी तो बकवास है। तो ये भी वैसा ही है। वॉलपेपर, स्क्रीन ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो बहुत अच्छा होता है, पोस्टर, वॉलपेपर, थंबनेल, जो भी कहो, पर अंदर खाली कुछ नहीं। तीसरा है माइक्रो चॉइस टैक। मैं भी अभी भी अपने शरीर का मालिक हूं। वो उस आदत कहती है कि तुम पराजित हो गए, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, पर हमें उसको भी वापस बताना है कि अभी भी मालिक मैं ही हूं, घर का मालिक मैं ही हूं, भले तुमने पूरा कमरा ऑक्यूपाई करके रखा है पर मालिक अभी जिंदा है। माइक्रो चॉइस टैंक। तो इसमें छोटे छोटे पानी पी लेना, या तो एक्सरसाइज कर लेना, या वॉक कर लेना, कुछ तो करना है। फिर थर्ड है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये जो वेगस नर्व है इसको स्टिमुलेट कर देना इन सब टेक्निक से, जिससे कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और शांति आ जाए। और लास्ट में एक स्पॉट जो केंद्रित करना है, ओम शांति। जीवन में लंबे समय तक अकेलापन रहा, जिसके कारण एडल्ट मूवीज देखने की आदत बनी और दृष्टि वृत्ति मलिन हो गई। अब ज्ञान में आने के बाद भी शरीर, रूप, रंग आदि की ओर आकर्षण होता है और स्थिति डाउन हो जाती है। हालांकि अंदर एक विश्वास है कि विषय विकारों पर जीत निश्चित है, इस स्थिति को स्थिर कैसे करें। मैं कुमारी हूँ, जॉब करती हूँ, मेरी माँ के शुगर की समस्या है, मैं फ्रूट डाइट पर हूँ, क्या फ्रूट डाइट से शुगर बढ़ सकती है, शुगर से बचाव और संतुलन कैसे रखें। ये जो वेगस नर्व है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, जितना उसमें उत्तेजना वाला डालो उतना वेगस डाउन हो जाता है, जितना उसको हल्का उसमें डालो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, उतना वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। एक है स्वास्थ्य, एक है आरोग्य, और तीसरा है निरोग। ये 3 है। जो पाताल में है वो है निरोग, अर्थात रोग का ना होना, बस यहीं तक। जो धरती पर है वो है आरोग्य, आरोग्य अर्थात कोई भी रोग नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी डिफिशियंसी नहीं है, और ऊपर जो है वो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित। ये 3 अलग अलग है, स्वास्थ्य, आरोग्य और निरोग। तो लोग इस 3 को ही हेल्थी कहते हैं, हेल्दी, परंतु अंतर है। सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, मुझे थकान नहीं लगती, भूख अच्छे से लगती, सब कुछ अच्छा है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, ये नहीं है, ये उसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा बहुत ऊंची है। ऑफिस में काम करते समय अव्यक्त आवाज सुनाई देती है लेकिन स्पष्ट समझ नहीं आता, इसमें कितना ध्यान देना चाहिए? अव्यक्त आवाज हो सकता है कोई साइकेट्रिक बीमारी ही हो जिसे अव्यक्त आवाज कह रहे हो। एक बहन ने फोन किया था कि मेरा बेटा है उसको बाबा की आवाजें सुनाई देती है, और आपकी भी आवाज सुनाई देती है, तो उसको बहुत खुशी हुई। बताते समय वो ये कहना चाहती थी इनडायरेक्टली कि मेरा पुत्र कोई दिव्य पुत्र जन्म लिया है, और शायद कोई एडवांस पार्टी की आत्मा, यही उसका भाव था कि उसको ऐसे टचिंग्स हो रही है। हमने कहा अर्जेंट साइकेट्रिक रेफरेंस, इधर हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस होते, सुनाई देता है कुछ कुछ या दिखाई देता है कुछ कुछ। उसको सिजोफ्रेनिया डायग्नोस्ड हुआ और फिर ट्रीटमेंट चालू है अभी, बहुत अच्छा है। जिसको हम भूत प्रेत बाधाएं ये सब कहते हैं, वो अत्या ज्यादा से ज्यादा समय साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें जिसको बीके ये भूत और ये सब डायग्नोस करते, उसमें किसी आत्मा ने प्रवेश कर दिया। एक पेशेंट एडमिट थी तो वो बहुत, उसको कुछ कुछ होते रहता था, उसके साथ जो सेवाधारी माता थी वो आके हमको कहती थी क्या है, क्या है, ट्रीटमेंट चालू है, क्या है? मैं बोला ट्रीटमेंट चालू है अभी, क्या बोले आत्मा का प्रवेश है। आपको नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, फिर लास्ट में 2 दिन आई, बोले 3 3 है, मैं रात में सोती हूँ उसके पास, 3 है 3। बार बार ग्रुप छोड़ने का संस्कार है, इसे कैसे बदले? ग्रुप ज्वाइन करते हैं, भयंकर बातें सुनते हैं, तो वैराग आता है, ग्रुप से आउट, क्लास में आना बंद, ये सब श्रीमत के खिलाफ है। ना 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 ना, ग्रुप से बाहर। मैं कुमार हूं, अजनबी और बहनों के सामने नर्वस हो जाता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं, स्टेज पर भी आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? मैं विद्यार्थी हूं और वासना मास्टरबेशन में गहराई से गिर चुका हूं, क्या सुधार संभव है, कैसे बाहर निकले? अत्यधिक संवेदनशीलता और सभी को खुश करने की आदत को कैसे ठीक करे? अधर कुमार होकर पुरुषार्थ कैसे करे? बहुत कर्जा है जिससे मन डिस्टर्ब रहता है, ये भी कुमारों की समस्या है, इससे कैसे बाहर निकले? रिलेशनशिप के कारण गिल्ट आता है, और यह बात सेंटर में किसी को नहीं बताई, क्या इसे छिपाना बोझ है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे हल करे? कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए? मेमोरी कैसे सुधारे? कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करे? बाहरी नकारात्मक वाइब्रेशन से कैसे बचे? कर्मयोगी कैसे बने? थकान से बाहर कैसे निकले? वर्क फ्रॉम होम वर्सेस बाहर काम क्या बेहतर है? कमजोर परिस्थितियों में निर्णय कैसे ले? आलस्य से कैसे मुक्त हो? निश्चय है लेकिन एक्सट्रीम आ गया, सागर में कूद जाऊं को मानने में डर क्यों लगता है? व्यापार में विरोध और निंदा से कैसे निपटे? 84 जन्मों में आत्मा की आवाज एक जैसी रहती है या बदलती है? सुमित भाई, इस पे जरा आप रिसर्च करना। ये तो हमने भी नहीं सोचा कभी कि आत्मा की आवाज वही रहती है कि अगले जन्म की बदलती। फ्रूट डाइट पर हूं लेकिन सेवा के दौरान भोजन मना नहीं कर पाता, स्वाद के कारण गिर जाता हूं और गिल्ट होता है कैसे स्थिर हो? गलत कार्यों सेक्सुअल फैंटेसीज में डोपामिन क्यों रिलीज होता है? डोपामिन की ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। द्वापर से ये सृष्टि को बढ़ाने के लिए ये जरूरी था, नहीं तो ये शादी या विधिया कुछ होती ही नहीं थी, ये सृष्टि बढ़ती ही नहीं थी। सतयुग में जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही रहती। इसमें अत्यधिक सुख दिया हुआ है, अत्यधिक डोपामिन डंपिंग हो जाता है, इसलिए स्त्री पुरुष सब आकर्षित होते हैं इसकी तरफ। किसी आत्मा के साथ अट्रैक्शन और कार्मिक अकाउंट को कैसे समाप्त करें? भाव और भावनाओं की पहचान और परिवर्तन कैसे करें? अवचेतन मन को विस्तार से समझाए, क्या इस पर भट्टी रख सकते हैं? ये चालू ही तो है। स्थिति और अवस्था में क्या अंतर है? सुशील भाई, आपके लिए होमवर्क है। स्थिति और अवस्था क्या अंतर है? मुरली में युक्ति शब्द का स्पष्ट अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम भाई, इस पे थोड़ा रिसर्च करना है। युक्ति अर्थात क्या? युक्ति अर्थात झूठ बोलना है क्या? किसी के घर गए, उन्होंने कहा भोजन करो, हमने कहा हमारा पेट भरा हुआ है, तो क्या यह झूठ हुआ या युक्ति युक्त हुआ? युक्ति शब्द की परिभाषा। ड्रामा इज ऑटोमेटिक का क्या अर्थ है? तुलना न करने की शिक्षा और नंबरवार रैंक की बात, इन दोनों को कैसे समझे? तुलना न करना और नंबरवार या रैंक, ये सब प्रश्न है। ओम शांति। आज किसका है?
ओम शांति। आज डे फिफ्थ का होमवर्क है, फर्स्ट पॉइंट से थर्ड पर्सन नरेशन से, जिसमें हमें खुद को साक्षी होकर देखना है। जैसे कोई फीलिंग या फिर कुछ किसी ने हुआ है या कोई इंजरी लगा है, तो जैसे कुनाल इज इंजर्ड या कुशल इज वॉकिंग या अखिल फील कोल्ड, ऐसा खुद को थर्ड पर्सन के नरेशन से देखना है और उस पैटर्न को नोटिस करना है कि ये क्यों हुआ है। ये अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड होमवर्क है आज के लिए, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, प्ले टू द एंड टेक्निक से, जिसमें पूरी पिक्चर को एक साथ देखना है। एक हैबिट बनानी है हमेशा के लिए खुद की, कि हमेशा एंड रिजल्ट को देख लेना है, जो त्रिकालदर्शी की बात भी बाबा कहते हैं। जैसे एक कोई सिचुएशन आई तो वो क्यों ट्रिगर हुई, इमोशंस क्यों ट्रिगर हुए, कॉन्फ्लिक्ट देखना है, पहले विजुलाइज कर लेना है सारा, ये ट्रिगर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है और इसका एंड रिजल्ट ये है, इसका माइंड पे, करंट सिचुएशन पे, मेरे माइंडसेट पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, फिर जाके एक्शन में उतरना, एक बार जागरूकता से देख लेना, तो और वो डिले हो जाएगा एटलीस्ट तब के तक के लिए। अपनी इमोशंस को थोड़ा साक्षी होकर देखना, उसको डिले कर देना, थोड़ा सा पॉज लेना, रिकॉल करना कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है और फिर एक्ट करना, ये सेकंड था। थर्ड है माइक्रो चॉइस स्टेक, तो इसमें भी जैसे बताया कि हमारे पास विकल्पों का ढेर होना चाहिए, हमारे पास विकल्प अवेलेबल होने चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए, मध्य में कोई अचानक से परिस्थिति आती है उसके लिए। तो यहीं पे बताया गया है कि पानी पीना, थोड़ा ठंडा पानी पी लेना, मुंह धुलना ठंडे पानी से, पुशअप्स अगर कर सकते हैं उस सिचुएशन में, रूम पे है या फिर कहीं गार्डन में है या फिर कुछ ऐसी जगह है, या शॉर्ट वॉक करना या लॉन्ग वॉक पे चले जाना, ऑफिसेज में है तो कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी कुछ ऐसा सेटअप हमारे लिए खुद के लिए तैयार रखना, या कोई ऐसे व्यक्ति से बात कर लेना जिसके साथ थोड़ा सा बेटर फील हो, ज्ञान में हमारा टीचर हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे ऊपर स्थिति में है। नेक्स्ट है वेगसनस एक्टिवेशन, इसके लिए बताया गया है कि कोल्ड शॉक थेरेपी, ठंडे पानी से नहाना, मुंह धुलना या ब्रीदिंग टेक्निक। एक काम इसके लिए करना है, फोर्थ होमवर्क के लिए आज ब्रीदिंग टेक्निक्स पे पढ़ना है, रीडिंग लर्न करना है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक्स इस सिचुएशन में, इस इमोशंस में काम आ सकती है। बॉक्स ब्रीथिंग का कई बार बताया है, या 4-7-8 टेक्निक्स का आज बताया है, या शंख की ध्वनि, तो मॉर्निंग में एक बार या दो बार हम उसको ट्राई कर सकते हैं, या फूड में फूड मसाज के बारे में बताया है, या कोई ऐसी सिचुएशन अगर आए तो हम बेयर फुट वॉक गार्डन में या फिर कहीं ऑफिसेज में कर सकते हैं इफ सूटेबल है तो। लास्ट है सेंचुरी विजुलाइजेशन, तो इसके लिए फिफ्थ पॉइंट के लिए होमवर्क है, जैसा इसका हिंदी में है, मानसिक गर्भगृह की कल्पना। खुद के लिए एक ऐसा स्थान डिसाइड करना है जहाँ पे मैं रहूँ, बाबा रहे, या हमारी ऊंची स्थितियाँ रहे, हमारा सूक्ष्म रूप रहे, समथिंग लाइक दैट, या फिर मानसिक रूप से जंगल में चला जाना, या सुबह सुबह जंगल की सैर कर लेना और दिन भर उसको चेतना में जागृत रखना, कोई ऐसा सेल्फ डायमेंशन बना के रखना खुद के लिए, सुबह सुबह उसकी प्रैक्टिस भी करना बीच बीच में, या कमरे में या ऑफिस में कोई ऐसा स्थान रखना जो हमारे लिए ऊंची स्थिति का प्रतीक हो। जैसे कई बार मंदिर जाते हैं हम, या बाबा के रूम में बाबा की ट्रांसलाइट के सामने बैठ जाते हैं, जब भी कुछ ऐसा हो तो उस स्थिति में मानसिक रूप से चले जाना। एक और इसमें है अमृत वेला, कोई ऐसी टेक्निक हमें खुद के लिए बना के रखना है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, खुद को एकदम सारी सिचुएशन से निकाल के और हमारी स्थिति को अचानक से ऊंची स्थिति में स्थित कर दे स्वयं को। जैसे शांति स्तंभ से सारी शक्तियाँ एकदम से ले लेना, या आंगन में खड़े होके चारों धामों से सारी शक्तियाँ आ रही हैं और मुझे पूरा लाइट का बना रही हैं। तो इस प्रकार से ये आज के 5 होमवर्क हैं, और ग्रुप में सेंड कर देंगे तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा इसका।
चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर, हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सत्य ज्योति का बनकर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये गुप्त साधना का है पथ, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी, कभी तपस्या कभी संघर्ष तो कभी आत्मा की मौन ज्योति। अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है, भय और मोह सब त्याग जाना है, कांटे चुभे या आंधियां उठे, सत की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये योग अग्नि नहीं केवल जलाती, ये शुद्ध भी करती है हर कण कण, जो भीतर से अंधकार को मिटा दे, है यही अग्निपथ का अमर प्रण। ये अग्नि करती वासनाओं को भस्म, ये अग्नि करती अहंकार का अंत, जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से वो पा लेता परमात्मा का अंत। अग्निपथ अग्निपथ चलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ पर तू
नहीं अकेला, भगवान स्वयं संग संग चलते, हर आंसू को मोती बनाते, हर पीड़ा को सहज ही हरते। ये पथ कठिन है पर है अमर, यही मुक्ति का सच्चा द्वार, अग्निपथ ही साधक की पहचान है, यही तपस्वी जीवन का आधार। अग्निपथ अग्निपथ चलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर, मैं अग्निवीर मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर मैं अग्निवीर। चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर, जहां तुम में ना कोई दुख ना भय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय। मैं अग्निवीर मैं अग्निवीर।